दिन भर 7 नवंबर दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। महाराष्ट्र में बरकरार महायुति की दरार, राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता, शिवसेना बोली,
भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रहे उसका मतलब ये है कि ये बहुमत नहीं जुटा पा रहे और महाराष्ट्र के ऊपर राष्ट्रपति शासन थोपना चाहते।
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का ऐलान, करतारपुर आने वालों को लाना होगा पासपोर्ट, इमरान खान ने की थी छूट की बात, भारत ने कहा,
तो फिलहाल स्थिति यह है कि उस एमओयू में लिखा गया है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है।
और भारत के नए राजनीतिक नक्शे पर नेपाल की आपत्ति, क्या है भारत का पक्ष?
बाउंड्री में कोई 1 मिलीमीटर का चेंज नहीं है हमारे पास।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए हुए 15 दिन हो जाने के बाद भी सरकार के गठन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। चुनाव नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। लगातार हो रही तमाम बैठकों के बाद भी राज्य में सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है, शिवसेना ने भाजपा से इस स्थिति पर उनकी योजना पूछी है। इराक के बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को खत्म करने की कोशिश में सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी का इस्तेमाल करने से 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। हाल ही में हुए हिंसा में 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पिछले महीने की शुरुआत में शुरू हुए इन प्रदर्शनों के बाद से 260 लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। बुधवार को इराक के सैन्य प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि सुरक्षा बलों को गोलीबारी का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे बल प्रयोग पर नाराजगी जताई है। आप नेताओं ने हमारे देश को तबाह कर दिया है। आपने 16 सालों तक हमारे धन और संपत्ति को लूटा है। आप सब बाहर निकलिए, अब बहुत हो गया। हम ऐसी सरकारें नहीं चाहते हैं। सभी सुरक्षा बल आपके साथ हैं और हमें मारा जा रहा है, आखिर क्यों? इन सभी राजनीतिक दलों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। हेग में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कांगो के हथियारबंद गिरोह के पूर्व सरदार बॉस्को नतगांदा को 30 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन्हें मानवता के खिलाफ कई अपराधों सहित युद्ध अपराधों के 13 मामलों में जुलाई में दोषी ठहराया गया था। उनके अपराधों में बलात्कार, लोगों को सेक्स गुलाम की तरह इस्तेमाल करना, पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में नागरिकों के नरसंहार के आदेश शामिल हैं। न्यायाधीश रॉबर्ट फ्रेम ने कहा कि नतगांदा ने जो अपराध किए हैं वे बेहद क्रूर थे।
Victims suffered physical, psychological, psychiatric and social consequences.
इन अपराधों की वजह से पीड़ितों को काफी लंबे समय तक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक प्रभाव झेलने पड़े और साथ ही सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए मोंगब वालू में रहने वाली 13 साल की एक बलात्कार पीड़िता को ऐसी चोटें आईं जिन्हें ठीक होने में कई महीने लगे और बाद में सर्जरी की भी जरूरत पड़ी। इस घटना से पैदा हुए डर से उसने स्कूल तक छोड़ दिया। ये थे न्यायाधीश रॉबर्ट फ्रेम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के एक पूर्व सांसद ने अगले महीने होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए कंजर्वेटिव नेता बोरिस जॉनसन को समर्थन देने की अपील की है। इयान ऑस्टिन, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में ही लेबर पार्टी को छोड़ दिया था, उन्होंने अपने नेता जर्मी कार्बिन को ब्रिटेन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य बताया है। और उधर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने के पक्षधर रहे 3 दल लिबरल डेमोक्रेट्स, ग्रीन और प्लेट सिमरू ने दर्जनों सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होने के लिए समझौता कर लिया है। ब्रिटेन में चुनाव के लिए प्रचार अभियान के बीच मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता को यहूदी विरोधीवाद के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 4th सप्ताह भी जारी रहे। हाईस्कूल के हजारों छात्रों ने अपने बेहतर भविष्य से जुड़ी को उठाते हुए प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। छात्रों ने स्कूलों को अवरुद्ध करके रखा और स्कूल प्रणाली से अपनी निराशा भी व्यक्त की। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। हम आपको बता दें कि राजकोट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा 2020 मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी कर रही है और बांग्लादेश ने बिना नुकसान 54 रन बना लिए हैं। हम इस मैच की बात बाद में करेंगे। वजह यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति की पिच पर जो मैच खेला जा रहा है वो कहीं ज्यादा चर्चा की वजह बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर यानी अब से ठीक दो हफ्ते पहले आए थे, लेकिन अब तक नई सरकार नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए महायुति बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर दोनों दलों के बीच बनी खाई अब तक नहीं पड़ सकी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा वो सुनिए।
माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिले, उनको राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराया, उनके साथ आगे क्या इसकी कानूनी चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा।
288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के 105 और शिवसेना के 56 विधायक हैं। बीजेपी कई बार कह चुकी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। वहीं शिवसेना 50-50 फॉर्मूले यानी ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री पद साझा करने पर अड़ी है। शिवसेना के विधायकों की भी आज बैठक हुई। उस बैठक के बाद पार्टी के नेता संजय राउत ने क्या कहा वो भी सुनिए।
पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने फिर एक बार अपनी भूमिका, अपनी बात नवनिर्वाचित विधायकों के सामने रखी और उनसे सवाल किया, क्या जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ या जो चल रहा है क्या मैं गलत हूँ? तो सभी विधायकों ने एक सुर में कहा, उद्धव जी आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आप जो निर्णय लेंगे उसके लिए हम आपके साथ हैं।
संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन थोपने की कोशिश में है।
भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही, उसका मतलब ये है कि ये पार्टी जो है ये बहुमत नहीं जुटा पा रही है, नंबर एक। और महाराष्ट्र के ऊपर राष्ट्रपति शासन जबरदस्ती से थोपना चाहती है। आप सत्ता की हवा छोड़ दीजिए और बताइए कि हमको सरकार नहीं बनाना है। राज्यपाल से अगर आप मिलकर आए हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप 145 का बहुमत की लिस्ट आप राज्यपाल महोदय को देनी चाहिए। आप दो दिन बाकी, आप ये जो पेच डालना चाहते हैं कि किसी भी हाल में किसी की सरकार या नहीं बननी चाहिए, ये सरासर संविधान के खिलाफ।
उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा दखल रखते हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आज क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं।
अलायंस को मैंडेट मिला है और जल्दी ही निर्णय होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से कि ज्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है अलायंस में उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है।
तो महाराष्ट्र में मामला ऐसा उलझ गया है कि सुलझते नहीं बन रहा है। अब आगे किसके पास क्या रास्ते हैं ये बताने के लिए मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ ही मयूरेश कुन्नूर जी। स्वागत है मयूरेश आपका।
जी बात सर।
विधानसभा का टर्म तो 9 नवंबर को पूरा हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं, बार बार ये बात दोहराई भी जा रही है, यानी अब सिर्फ कल का दिन बाकी है। क्या संभावनाएं फिलहाल आपको नजर आ रही हैं?
जी फिलहाल अभी 30 घंटे से भी कम समय हाथ में बचा है, तो क्या होगा? तो शायद आज जिस तरह के बयान शिवसेना और बीजेपी के पास से आए, बीजेपी के जो नेता थे वो राज्यपाल से मिलने गए थे, उन्होंने बकायदा कहा कि वो अल्पमत में कोई भी सरकार नहीं स्थापन करने जा रही है और वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मार्ग क्या है वो बोलने के लिए गए थे। तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंचुअलिटी जो है वो शायद इन्होंने मांग की है। आरोप भी संजय राउत ने ये किया कि बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो शायद अगर कल रात 12 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन की तरफ जाएगा ये रास्ता। एक सस्पेंशन होता है, सस्पेंडेड एनिमेशन, अगर वो फेस चली जाए तो शायद देवेंद्र फडणवीस को बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन राज्यपाल उन्हें कह सकते हैं कि आप केयरटेकर गवर्नमेंट ले लो और फ्लोर टेस्ट में जाने के पहले उनके पास कुछ समय बचेगा, तो क्या उस समय में कुछ पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी,
सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी नजर राज्यपाल पर है, जो एडवोकेट जनरल से ने जाकर राज्यपाल से आज मुलाकात की, वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी और शिवसेना की साझेदारी जो है उसको 3 दशक से ज्यादा वक्त हो गया है, पहले कई बार समस्याएं हुई सुलझ गई, इस बार कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं निकल रहा है, क्या कारण देख रहे हैं आप?
क्योंकि इस बार शिवसेना ने अपना स्टैंड बहुत ही फर्म कर लिया है। पिछली बार भी शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, लेकिन उसमें बीजेपी के पास इतने नंबर्स थे और एनसीपी ने भी उन्हें बाहर से सपोर्ट करने की इच्छा जताई थी, इसलिए बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं आई, शिवसेना उनके साथ नहीं आई, 6 महीने बाद आई। अब आंकड़े जो है वो पूरी तरह शिवसेना इस तरह का रोल प्ले कर रही है कि जो उनकी मांगे है वो पूरी कर लें, और उनकी मांग जो है सीएमशिप की, कि आधा टेन्योर सीएमशिप का उन्हें मिले, तो इसलिए वो अड़ी है। दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि शिवसेना दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रही है और बीजेपी उनकी कोई भी मांग नहीं रही है। अगर बीजेपी आधे समय जो है सीएमशिप का छोड़ देती है तो उनके लिए भी बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। तो ये जो दोनों अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, इस वजह से ये जो मामला है वो सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है।
जी मयूरेश, जो आपने दूसरे ऑप्शंस की बात की, बात तो बार बार हो रही है लेकिन कोई उन ऑप्शन की तरफ जाना नहीं चाह रहा है, संक्षेप में बताइए क्या कोई ऐसा ऑप्शन आजमाता हुआ दिख रहा है पर्दे के पीछे?
पर्दे के पीछे तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि शिवसेना को राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस समर्थन दे दे और शिवसेना का मुख्यमंत्री हो जाए। शिवसेना हमेशा ये कह रही है कि हम उनके पास ऑप्शन खुले हैं और उनके पास 175 का बहुमत,
लेकिन वो आजमाएंगे कब?
वो बताते हैं कि हम सिर्फ फ्लोर पे ही बताएंगे। दूसरी तरफ शरद पवार ने ये कहा है कि उनका मैंडेट जो है वो विरोधी पक्ष में यानी ऑपोजिशन में बैठने के लिए है और वो अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जानकारी ये है कि एनसीपी ने शिवसेना को पहले ये बताया कि आपको बीजेपी के साथ जो कोएलिशन है उससे बाहर आना पड़ेगा, तब हम जाके बात करेंगे। तो क्या शिवसेना इस मोड़ तक जाती है
ये देखने की बात है। बहुत शुक्रिया मयूरेश पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को होना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीती 1 नवंबर को ट्विटर पर जानकारी दी थी कि भारत से आने वाले यात्रियों को पासपोर्ट लाना जरूरी नहीं होगा, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने कहा है कि यात्रियों को पासपोर्ट साथ रखना होगा। कॉरिडोर खोलने के 2 दिन पहले बने असमंजस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं काफी कंफ्लिक्टिंग हैं, कभी वो बता रहे हैं कि चाहिए, कभी बता रहे हैं नहीं चाहिए। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक एमओयू है, उस एमओयू को अभी बदला नहीं गया है और एमओयू यूनिलैटरली बदला भी नहीं जा सकता है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि उस एमओयू में लिखा गया है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा भी होगा ये जो हमने प्रेस रिलीज इशू किया था उसमें लिखा है पिलग्रिम्स नीड टू कैरी ओनली अ वैलिड पासपोर्ट।
ये थे रवीश कुमार। कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी और अब पाकिस्तान का क्या कहना है ये जानने के लिए मैंने पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद बीबीसी उर्दू के साथी उमर दराज नागियाना से बात की।
इमरान खान ने जो ट्वीट किए थे उसमें खासतौर पर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने 2 रिक्वायरमेंट्स जो है ना उनको खत्म किया है। एक तो ये है कि वो उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, वो सिर्फ वैलिड आईडी के साथ आ सकते हैं, और दूसरा ये है कि उनको 10 दिन पहले रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा और इनॉग्रेशन वाले दिन जो है उनको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जो पहली शर्त थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपना आईडी कार्ड जो है वैलिड वो पास रखें, तो इसमें यही जो है वो कंफ्यूजन की वजह बनी थी। और उस कंफ्यूजन को बाद में क्लैरिफाई किया डीजी आईएसपीआर जो है उन्होंने भी क्लैरिफाई किया और फॉरन ऑफिस की तरफ से भी आया, तो उसमें अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान के ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर कोई वाजह क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि क्या उसका इससे उनका क्या मतलब था। लेकिन यही जाहिर हो रहा है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जी आपको पासपोर्ट जो है वो आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मतलब वो आपको पास रखना होगा अपनी शनाख्त के लिए, अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए, लेकिन वो आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उसके लिए आपको एक आईडी कार्ड इशू किया जाएगा जो वहीं से किया जाएगा आपका पासपोर्ट देखने के बाद। तो ये बात लिखते हुए शायद उन्होंने इस तरह लिखी जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई, या अगर इसके पीछे वाकई उन्होंने वेव ऑफ किया तो इसके ऊपर उन्होंने कोई अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दी।
लेकिन जो रजिस्ट्रेशन में छूट की बात की थी उन्होंने और फीस नहीं लेने की बात की थी वो अपनी जगह बरकरार है।
हाँ वो अभी तक अगर उनकी तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई तो ऐसा लग रहा है कि वो तो अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर 1 को जब ये ट्वीट किया था तो उसके बाद अब काफी दिन गुजर चुके हैं, 8-7 है। अगर इसके अंदर कोई चेंज होता तो वो भी वाजे तौर पर सामने आ जाता, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चेंज इसमें नहीं है, इन दो चीजों के अंदर भी चेंज।
जी, और एक सवाल सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी, अहम लोग जो आ रहे हैं जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ खास इंतजाम पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं?
जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, अभी भी आई थिंक वही होगा, अभी वो क्योंकि इस किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को वक्त से पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन लास्ट टाइम जब सिद्धू आए थे या उसके अलावा जो इंडिया से जो मिनिस्टर्स आए थे और सहाफियों की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी, तो उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई थी। जो डिग्निटरीज थे उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर लेके जाया गया था और फिर हेलीकॉप्टर्स ही से उनको वापस लाया गया था जहां से वो गए, और उनके साथ जब वो वहां पर मौजूद रहे तो वो भी बहुत इलेबोरेट किस्म की सिक्योरिटी रखी गई थी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस दफा भी ऐसा ही होगा, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पहले नहीं बताते तो उसके ऊपर कमेंट करना कुछ थोड़ा सा कबल वक्त।
लाहौर से जानकारी दे रहे थे उमर दराज नागियाना। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी तीर्थयात्री करतारपुर जाएंगे। यहां से जाने वाले जत्थे में अधिकतर हिंदू हैं। वो किन मान्यताओं को लेकर जाएंगे, बता रहे हैं रियाज सोहेल अपनी इस रिपोर्ट में।
वैसे तो आरती हिंदू मजहब के देवताओं और देवियों की उतारी जाती है, लेकिन यहाँ बाबा श्री चंद की आरती हो रही है। बाबा श्री चंद सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के बड़े फर्जंद थे। कराची से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर ठट्टा में बाबा श्री चंद की दरबार वाके है। रिवायत के मुताबिक कोई 450 साल कबल उन्होंने यहाँ धूनी या मुकदस आग जलाई थी। बाबा श्री चंद ने उदासी पंथ की बुनियाद रखी थी। सिंध में उनके पैरोकार हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो उन्हें सिख नहीं मानते।
सिख मज़हब का भी उसने अपनाया नहीं था और हम उसको सिख नहीं मानते। वो उदासीन थे, सनातन धर्म उसने बढ़ाया।
सिंध यूनिवर्सिटी के शोबे एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर जायदा रहमान जत उदासीन पंथ पर अपने रिसर्च पेपर में लिखती हैं कि सिखों ने 16वीं सदी में मुगल हुक्मरानों के जबर से बचने के लिए सिंध में नकल मकानी की और वो अपने साथ मजहबी रसूमात और रिवायात भी लाए। उन दिनों पंजाब में नानकपंथी और उदासीन पंथी फिरके मकबूल थे। शिकारपुर में वाके समाधा आश्रम के गद्दी नशीन बाबा श्री चंद के उदासीन पंथ के पैरोकार थे। दरबार के मुंतजिम भगवान दास कहते हैं कि बाबा श्री चंद ब्रह्मचारी थे।
समाधा दरबार तकरीबन 250 साल हो गए। बाबा हरभजन साहब पहली पाशाही पंजाब से आए, तो अभी हमारी सातवीं पाशाही बैठी हुई है, उसका नाम है बाबा नारायण भजन साहब।
शिकारपुर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की खालसा फौज के सिपाही ने भी दरबार कायम की, जो भी उदासीन पंथ के पैरोकार थे। हिंदू कम्युनिटी के जेर इंजाम इस दरबार को खट या चरपाई वाला दरबार कहा जाता है। कन्हैया लाल और भाई गुरदास ने इसकी बुनियाद रखी थी। शिकारपुर के चारपाई वाले दरबार के मुंतजिम प्रताप राय का कहना है कि पाकिस्तान में गुरु नानक के पैरोकार सिंध में ज्यादा है।
सिंध में ज्यादा है, फिर तो यहाँ पंजाब में है, इंडिया के पंजाब में उसका मेला लग रहा है 550 साल टोटल, उसमें सिंधी जाएंगे, सिख जाते हैं मगर 10% से ज्यादा नहीं होते हैं।
बड़े सगीर की तकसीम के बाद सिंध से सिखों की आबादी तकरीबन चली गई, जबकि हिंदू आबादी ने भी बड़े पैमाने पर नकल मकानी की, लेकिन जो रह गए उन्होंने उदासीन पंथ और गुरु ग्रंथ को संभाले रखा। रियाज सोहेल, BBC शिकारपुर।
भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को औपचारिक रूप से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इसमें उत्तराखंड के इलाके में नेपाल और भारत के बीच कालापानी और लिपू लेख जैसे क्षेत्रों को भारतीय सीमा में दिखाया गया है। नेपाल सरकार ने इसे चुनौती दी है। भारत सरकार के अनुसार इसमें कुछ नया नहीं है, जबकि नेपाल सरकार कहती है कि कालापानी उसका क्षेत्र है। BBC संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कुछ दिन बाद औपचारिक रूप से देश का एक नक्शा जारी किया। इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। दरअसल इस नक्शे में उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित कालापानी और लिपुलेख नामी इलाकों को भारत के अंदर दिखाया गया है। नेपाल का दावा है कि ये इलाके इसके हैं, और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि नेपाल सरकार बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहती है कि काला पानी नेपाल का क्षेत्र है। लेकिन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार के अनुसार इस साल का मैप पिछले सालों से अलग नहीं है। फर्क केवल इतना है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर से दो केंद्रीय प्रशासित इलाके बन गए हैं और इन्हें नक्शे में ऐसा ही दिखाना था।
बाउंड्री में कोई एक मिलीमीटर का चेंज नहीं है हमारे में। ये सिर्फ चूंकि हमारे एक जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसको लागू करके दिखाते हुए हमने सिर्फ उतना रीऑर्गेनाइजेशन किया है। जैसे हमारी कोई स्टेट बनती है, तेलंगाना बनता है, तेलंगाना बना था 5 साल पहले, आंध्र प्रदेश और मुझे तेलंगाना अलग हो गया था, तो तब भी हम हर साल जो भी नई डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, नई स्टेट बनती हैं, वो हम दिखाते रहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बनना एक लगातार एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है अपने कंट्री को रीऑर्गेनाइज करना। तो इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री को कोई चेंज नहीं किया गया है।
नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने ये मैप या नक्शा एक तरफा तरीके से जारी किया है और इसे करने का इसे कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के एक प्रेस रिलीज में नेपाल सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है। इसके अनुसार कालापानी एक विवादित इलाका है, इसे द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा। एक तरफा संकल्प नेपाल को स्वीकार नहीं है। नेपाल ऐतिहासिक दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कूटनीतिक रूप से इस मुद्दे को हल करने के लिए बाध्य है। दरअसल नेपाल का दावा है कि कालापानी और लिपु लेख इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक समझौते के अंतर्गत हासिल किया था, लेकिन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार कहते हैं,
लेकिन आपका क्वेश्चन है कि इस मैप को यूनिलेटरली नहीं, ये हम हर साल यही पॉलिटिकल मैप हमारा पिछले साल का भी उठा के देख लीजिए, 2018 का भी, 2017 का भी उठा के देख लीजिए, 2015-16 जितना पीछे जाएंगे, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में या इंटरनेशनल बाउंड्रीज में कोई चेंज नहीं है।
नेपाल के अधिकारियों के अनुसार भारत ने 1962 में चीन से हुए युद्ध के बाद अपनी सभी सीमा चौकियों को नेपाल के उत्तरी बेल्ट से हटा लिया था, लेकिन कालापानी से नहीं। और लेपुलेख को लेकर 2014 में विवाद उस समय शुरू हुआ जब भारत और चीन ने नेपाल के दावे का विरोध करते हुए लेपुलेख के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार गलियारे का निर्माण करने पर सहमति जताई थी। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
आज गुरुवार है और आपको इंतजार होता है अपनी चिट्ठियों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ हैं ज्योतिका सिंह, जिनके पास चिट्ठियां हैं और ईमेल भी हैं, और ईमेल से शुरुआत करने जा रही हैं।
बिल्कुल, और सबसे पहले मैं श्रोताओं का नमस्कार कहना चाहूंगी और ईमेल से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। और सबसे पहले ईमेल है कृष्णा कुमार का, लिखते हैं कि दिनांक 6 नवंबर 2019 को दिन भर कार्यक्रम में इकबाल अहमद द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहान बेहद रोचक, ताजगी भरा और ज्ञानवर्धक लगा, लेकिन मेरी एक शिकायत है कि मैं विगत 15 वर्षों से लगातार बीबीसी इंडिया बोल में फोन लगाता आ रहा हूं, लेकिन आज तक मेरा फोन नहीं लगा और जब भी लगा तो मेरा फोन उठाया नहीं गया।
कृष्ण कुमार साहब, आप पिछले 15 वर्षों से बीबीसी के कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमें अफसोस है कि एक बार भी आप इंडिया बोल में शामिल नहीं हुए, ये तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए अगर आप अपना मोबाइल नंबर हमें भी लिख के भेजेंगे तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपको हम फ़ोन करें ताकि आप कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। लेकिन कृष्ण कुमार भाई, आपका ये खत, ये ईमेल देख के मुझे एक शेर याद आया है जो अख्तर मुस्लिमी नाम के शायर ने लिखा है। वो लिखते हैं, जो बाखबर थे वो देते रहे फरेब मुझे, तेरा पता जो मिला एक बेखबर से मिला। तो आपका पता क्या है ये तो आपने लिखा ही नहीं, यानी जब भी आप हमें ईमेल लिखें तो ये ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से, किस शहर से, किस कस्बे से, किस गांव से ये चिट्ठी भेज रहे हैं, और लिखते ज़रूर रहिएगा।
अगला ईमेल है नवीन कुमार मिश्र का, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं, रेहान फजल की विवेचना और दुनिया जहान कार्यक्रम की बीबीसी को यूट्यूब चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट बनानी चाहिए
ताकि, बहुत ही अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है,
ताकि इन कार्यक्रमों को फेक न्यूज के समय में अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सके।
बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही सही बात कही, और इससे ये भी पता चलता है नवीन कुमार जी मीडिया पर कितनी गहरी नज़र रखते हैं। आपका ये सुझाव हमने नोट कर लिया है और अगर जितना जल्दी संभव होगा इस पर हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। कानपुर से ही एक दूसरी चिट्ठी भी आई है, ये पोस्टकार्ड है, अक्षय ने लिखा है, और इन्होंने बहुत तीखी आलोचना की है बीबीसी की, और लिखते हैं, खबर पूरी तरह कुटिलतापूर्ण है अगर बीबीसी रेडियो पर है। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये ज्योतिका, मैं बताता हूँ। इन्होंने लिखा है, बड़ी चिट्ठी है, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने पर बीबीसी हैरान है तथा वहां के हालात इस तरह प्रसारित किए जाते हैं कि जिससे उन उपद्रवियों को प्रोत्साहन मिले जो मानवता के दुश्मन हैं। अब इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, बीबीसी योजनाबद्ध होकर वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था व देश के सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। इन्होंने ये तो लिखा है लेकिन कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया है कि बीबीसी का कौन सा कार्यक्रम ऐसा या कौन सी रिपोर्ट इनको ऐसी लगी जिससे इनको लगा कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर बीबीसी हैरान है। बहरहाल हम इतना कहना चाहेंगे कि बीबीसी न तो किसी खबर पर हैरान होता है, न खुश होता है, न आह्लादित होता है, न रंजोगम होता है। हम तो आपके बिहाफ पे, आपके लिए खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सच आप तक पहुंचना चाहिए। हम वही नहीं आप तक पहुंचाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। हम भी कुछ खास चीज़ें सुनना चाहते हैं लेकिन वही नहीं हम सुनते हैं। जो कुछ हो रहा है बहरहाल उसको बहुत सारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो कुछ जैसी चीज़ें हो रही हैं उनको वैसे ही हम प्रस्तुत आप तक कर दें और आपके विवेक पर छोड़ दें कि आप उससे अपने नतीजे निकालें। इसलिए इस आलोचना का बहुत बार मैं जवाब दे चुका हूं कि बीबीसी किसी षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहा है। दरअसल हमारी जो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं वो जानते हैं अगर कश्मीर में उपद्रव हो रहा है तो उपद्रव की खबर हम देंगे, अगर कहीं देश में दूसरी जगह उपद्रव हो रहा है, विश्व में हो रहा है, तो उसकी खबर भी हम देंगे। खबर को हम दबा नहीं सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि किसी श्रोता को पसंद आ रही है, किसी को पसंद नहीं आ रही है। उम्मीद है अक्षय भाई आपको जवाब मिल गया होगा, आपकी अगली चिट्ठी का मुझे जरूर इंतजार रहेगा।
अगला ईमेल मैं लेना चाहूंगी राजेश यादव का। ये मिर्जापुर यूपी से लिखते हैं कि जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था तब से आपका समाचार सुन रहा हूं। आज मैं टीचर हूं, बिना बीबीसी सुने मुझे नींद नहीं आती। जम्मू कश्मीर की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी, बीबीसी का ही समाचार मैं हमेशा सुनता हूं।
राजेश यादव जी आपने ये चिट्ठी लिखी है और ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे कोई श्रोता कहें कि बिना बीबीसी का कार्यक्रम सुने उन्हें नींद नहीं आती। हमें ऐसी चिट्ठियां सुन करके लगता है कि हमारा हम जो काम कर रहे हैं उसका कुछ असर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आलोचना भरी चिट्ठियां सुनकर हम परेशान हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही मीठा मीठा और कड़वा कड़वा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राजेश जी लिखते रहिएगा। आज मुझे लगता है कि हम चिट्ठियाँ थोड़ा कम ले पाएंगे, समय नहीं है, इसलिए चलते चलते मैं पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पर लिखिएगा।
नमस्कार।
और अब राजकोट में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे मैच की बात अपडेट देने के लिए मौजूद है रेखा। जी रेखा, क्या अपडेट है अभी?
अपडेट है कि सबसे पहले हम बात कर लें भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे T20 सीरीज़ की, जिसमें 3 नवंबर को पहला मैच खेला गया था दिल्ली में और 7 विकेट से हराया था बांग्लादेश ने भारत को। आज की बात करें तो आज दूसरा मैच हो रहा है आज राजकोट में, जहां पर अभी ताज़ा स्कोर की हम बात कर लेते हैं। 83 के आसपास 85 रन बन चुके हैं, 2 विकेट जा चुके हैं और अभी
11वां
ओवर चल रहा है। लेटन दास और मोहम्मद नईम आउट हो चुके हैं और इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है बांग्लादेश की टीम, गेंदबाजी पर है अपनी भारत की टीम। और इसके अलावा पहला जो
जिस तरह से पहले 11 ओवर गए हैं लगता है कि बड़े स्कोर की तरफ बांग्लादेश बढ़ता हुआ
उम्मीद यही लग रही है, क्योंकि पहला भी परफॉर्मेंस जो रहा था पिछले मैच का वो काफ़ी सराहनीय रहा बांग्लादेश का और अभी भी ऐसी ही उम्मीदें नज़र आ रही हैं क्योंकि काफ़ी जोश में दिखती है बांग्लादेश की टीम।
लेकिन आज भारतीय टीम को चेस करना है, पिच भी अच्छी बताई जा रही है, यानी भारत के पास कुछ संभावनाएं आप देखिए।
बिल्कुल, रोहित शर्मा को लगता था कि पिच पे डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा मैच, तो आज की पिच पे उम्मीद है कि काफी अच्छी रही है।
रोहित का खास तौर पर 100वां मैच है ये T20 का। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सृष्टि श्रीवास्तव से।
बीबीसी समाचार। लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चौथे सप्ताह भी जारी रहे हैं। हाई स्कूल के हजारों छात्रों ने अपने बेहतर भविष्य से जुड़ी मांगों को उठाते हुए इन प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में आईएस चरमपंथियों के हमले में कम से कम 10 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 12 सैनिक लापता हैं। चीन का कहना है कि वह व्यापार विवाद में लगाए गए कुछ शुल्कों को रद्द करने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर पहुंचा है। पूर्वी अफगानिस्तान में संदिग्ध चरमपंथियों ने 3 न्यायाधीशों और 1 सरकारी अधिकारी की हत्या कर दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और नेटो सदस्यों के बीच समन्वय की कमी के कारण ये संस्था लगभग मर सी गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।